दिस रिमाइंड्स मी, एक दफ़ा मैंने सुना था कि जब रसूल मस्जिद नबवी में अपने असहाब से उन्होंने पूछा कि औरत के लिए सबसे अहम या उसको उसकी पसंदीदा चीज़ क्या होनी चाहिए जो उसको पसंद हो, तो असहाब उन्होंने सब ने अपने अपने तरफ से जवाब दिए। तो इमाम अली घर आए, उन्होंने बीबी फातिमा से खुद पूछा, तो उन्होंने कहा कि औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या उसके लिए जो जो वो वैल्यू करेगी वो है कि नॉट टू बी सीन बाय अ मैन और टू सी अ मैन, के मतलब वो ना किसी आदमी को देखे ना कोई आदमी उससे देखे।
बहुत अच्छा, बहुत खूब। और इसमें भी देखें, ये इतना अच्छा नुक्ता है कि हमारे नबी का टीचिंग का स्टाइल, टेक्निक्स इतने खूबसूरत होते थे कि वो क्वेश्चन उठाते थे ऐसी, अब सीधा सीधा वो कह सकते थे, वही मैसेज सबका मैसेज है कि जनाबे जहरा की हदीस वो कह सकते थे, जी मेरी बेटी ने ये कहा है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन उठाया, सबके जहन में सवाल डाला, सबसे कहा सोचो, रही सबने सोचा, सबने बताया, फिर इमाम अली घर आए आया, फिर बताया सबको, वहाँ पर भी ऐलान किया कि मैं पूछ कर आ रहा हूँ अपनी जोजा से और मेरी जोजा ने ये कहा है। कितना अच्छा स्टाइल है। और ये भी इस हदीस में ना, खैरुन अच्छा है, बहुत अच्छा, वाजिब नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ओह हजरत जहरा की इस हदीस पे हम कहाँ इस जमाने में अमल कर सकते, कैसे हो सकता है हम किसी मर्द को ना देखें और कोई मर्द हमें ना देखे, तो इम्पॉसिबल है। बस बीबी की टीचिंग्स इस जमाने के लिए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नो, कुछ ऐसा कह देते ना 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 ना, ये उस जमाने की हद तक थी, इस जमाने के लिए क्यों नहीं है, इस जमाने में बल्कि और ज्यादा है। बेहतर नहीं है क्या इस जमाने में भी? बेहतर तो है ना, जितना पॉसिबल हो। खैरुन है ना, खैर का लफ्ज है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही पुरसुकून और सुकून देने वाली चीज है। अगर औरत जितना उसको कम मर्द देखे और जितना वो मर्दों को कम देखे, सही है, क्योंकि बीबी भी मुलाकात करती रही। जाबिर आते थे बीबी के पास, है सलमान फारसी आते थे, लेकिन वो किन मकासद के लिए, कब कब, कैसे कैसे, बहुत खास खास मौके थे। बहुत अच्छी हदीस आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया जी। तो अब हमने दो, जी हाँ, दो क्वालिटीज़ के मुताल्लिक किया, तीसरी जो थी वो है कंजूसी। कंजूसी भी जाहिरन देखा जाए तो नेगेटिव मीनिंग है और यकीनन ये मुराद नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि उम्मुल आइम्मा बिज़ातुर रसूल ने अपनी शादी का लिबास भी राह खुदा में दे दिया। और हम लोग तो शादी का लिबास रखते हैं रखते हैं रखते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है हमारी बेटी पहने, यू नो, और उसमें से आजकल तो ये भी वो चला हुआ है कि जी कुछ उसकी एम्ब्रॉयडरी और कटिंग्स उसमें से डाल के किसी तरह उसको ही पहना देते अपनी बच्चियों को ही। तो लेकिन उम्मुल आइमा ने वो तक दे दिया, तो यकीनन वो वाली कंजूसी मुराद नहीं। कंजूसी मुराद ये कि बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल होना, यानी अपने क्या कहते हैं, क्योंकि खातून अमीन होती है, उसके पास ज्यादातर ये होता है कि या बाप का या शोहर का माल होता है, क्योंकि नफका उन पर वाजिब है और वो खातून के पास अमानत के तौर पर है। अब वो कहे कि जी मैं नजर करती हूँ कि अगर खुदा ने मेरा ये काम कर लिया तो मैं फला ज्यारत के लिए जाऊंगी, हज के लिए जाऊंगी, फिर शोहर से मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे, मुझे हज पे जाना है, मुझे हज पे जाना है। अब ये इस्लाम ने नहीं कहा कि इतना वो जाओ कि बस खर्च करती चली जाओ, क्योंकि उसको एहसास इतना नहीं होता जी, जब भी कुछ हो गया मैंने इतने बकरे ज़बह करने और सदका देना है, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, नहीं, ये इस्लाम ने कहा नहीं। इसमें ये अमानत है, जैसे इमाम अली भी जामे अज़दाद थे, यानी अपने जाती पर्सनल जो माल था उसमें बहुत ज्यादा सखी, लेकिन बैतुल माल में कितने सेंसिटिव, हसास। इसी तरह शोहर का माल है, अमानत है मेरे पास, उसमें सोच समझ के खर्च करना और सोच समझ के उसको स्पेंड करना, ये खातून की जो रिक्वायरमेंट्स और जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो डिफरेंट है मर्द से, उस लिहाज से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये क्वालिटीज़ उसके लिए बताई हैं। अच्छा जी जी कोई सवाल?
देखा जाता है हमारी सोसाइटी में कि ये अगर अप्लाई करेंगी भी औरतें तो यूजुअली क्या होता है कि किसी और को देने के लिए, चैरिटी के लिए स्टिंजी हो जाएंगी, लेकिन अपने ऊपर उसी फराख दिली से या उसी उसी उससे स्पेंड करेंगी। तो इससे वो याद आता है जो बीवी फातिमा की वो थी कि अल जार थुम मदार, कि पहले आपके नेबर्स फिर घर वाले। तो इससे होता है कि अगर आप स्टिंजी हैं भी तो स्टिंजीनेस आप
अपने,
सही जगह अप्लाई
सही
करें।
सही, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, बहुत आपने बहुत अच्छी तरह कनेक्ट किया کیونکہ لکھیں لوگ الجار ثم الدار، یعنی پہلے ہمسایا پھر گھر، پہلے دوسرے پھر، اس کو صرف دعا کی حد تک ذہن میں جو فوراً آتا ہے نا، تبادر کرتا ہے جو ذہن میں آتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ہر چیز میں، ایون چیریٹی میں بھی اس کو اتنا وائڈ کر دیا. ماشاء اللہ بہت اچھا. یہ بھی ایک حسن ہے، یہ بھی ایک ماشاء اللہ ایک کمال ہے کہ آپ اس طرح مطالب کو، حدیث معصومین کو ہر جگہ تطبیق مینز اپلائی کریں اور اس کو کنیکٹ کریں، ٹھیک ہے، اپنی ڈیلی لائف کے ساتھ. تو یقیناً یہ اسلام اور یہ اسلام پھیلانے والے اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہے، اتنی انسانیت ہے معصومین کی سیرت اور زندگی میں کہ کاش آج ہماری زندگی ان کی سیرت سے منور ہوتی تو کیا مزے کی زندگی ہوتی، کیا جنت بن چکی ہوتی. تو یقیناً یہ باتیں صدر صد حقیقت ہیں. اچھا جی، اب دہج البلاغہ کی حد تک ہم نے دیکھا، تو ہمارا یہ سوال جو تھا کہ جی نبی نے تو عورتوں کو اتنی فضیلت دی، علی کیوں عورتوں کو ڈاؤن کر رہے ہیں؟ یہ سوال تھا کہ ہم علی کو اتنا چاہتے ہیں لیکن امام علی کیوں ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بات واضح ہو گئی. اور نبی کے بارے میں جسے ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ نے اتنے فخر سے کہا ہے، بہت فخر سے کہا ہے کہ من اخلاق الانبیاء حب النساء، یا انبیاء کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ خواتین سے محبت، ان کا احترام کیا کرتے ہیں. یا آپ نے یہ بھی کہا کہ کسی کے ایمان کو اگر تولنا ہے، دیکھنا ہے کہ ایک عبد کا ایمان کتنا زیادہ، یہ دیکھو کہ وہ عورتوں کے ساتھ کتنا احترام اور اکرام کرتا ہے. اکرام زنان، خواتین کا اکرام، جو اس کے گھر میں، جو اس کے فیملی والے، اس کا احترام وہ جتنا زیادہ کرتا ہوگا اتنا اس کا ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا. ان دونوں کو ایک ہی توازن میں رکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ خدا کرے کہ ہماری زندگیاں معصومین کی تعلیمات سے منور ہو، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے بھی اس معصومین ہی کے دستخوان سے جو کچھ ہم تک باقی رہا ہے، جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، کتاب عظیم اخو القرآن یا ابن القرآن نہج البلاغہ، انشاءاللہ اس سے استفادہ کیا ہوگا. پھر ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.